मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 19 जुलाई 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। और सच पूछिए तो जब हम सब बच्चे होते हैं तभी से यह भावना हम सबके अंदर आने लगती है और जब थोड़े से बड़े होते हैं तो यह भावना कुल बुलाने लगती है और जब और थोड़े से बड़े होते हैं तो हम खुद उस भावना के प्रतिरूप बनने को बेचैन हो जाते हैं। बात मैंने थोड़ी सी घुमा फिराकर कही है और जानबूझकर मैंने बात को थोड़ा सा घुमाया फिराया है ताकि आप सबके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि आखिर में बात की किस पर जानी है। तो मित्रों आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज होती हैं, जो महान लोग होते हैं, उन महान लोगों की हम सब पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफीज पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और हर समाज अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए हमेशा कोशिश करता है कि वह अपने समाज के ही जो बहुत ही सफल लोग रहे हैं, जो बहुत महान लोग रहे हैं, उनके बारे में आने वाली पीढ़ियों तक संदेश पहुंचाए, उन्हें बताए ताकि हम बेहतरी की यात्रा पर निकल सकें। तो मित्रों ये दुनिया के हर देश के हर समाज, यहां तक कि छोटे छोटे समाज क्यों न हो, वह भी ऐसा करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से ही यह हमारे अंदर कहीं न कहीं भर जाती है। हम महाभारत की कथाएं सुनते हैं, रामायण की सुनते हैं, या और दूसरे धर्म ग्रंथों की कह लीजिए, या पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं कल्टिवेट जो किए करने की कोशिश होती है वैल्यू सिस्टम को ही होती है, उसी में एक महापुरुष भी आते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि दरअसल हम जब इनके बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमें सीखना क्या चाहिए। क्या हम सचमुच कुछ सीखते भी हैं या पढ़ करके एक कुछ एंटरटेनमेंट थोड़ी देर के लिए हो जाता है और हम भूल जाते हैं, क्या होता है दरअसल में और हमें क्या करना चाहिए। मित्रों एक बात तो मैं यहां आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, वो ये कि यहां दो शब्द हैं, एक महान व्यक्ति और दूसरा सफल व्यक्ति। याद रखिए कि मैं महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सफल व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा संदेह पैदा हो कि भई ये महान व्यक्ति और सफल व्यक्ति अलग अलग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम उसी को महान मानते हैं जो सफल हुआ हो, यानी कि हम कहीं ना कहीं दोनों को पर्यायवाची मान लेते हैं, सिनोनिमस मान लेते हैं कि दोनों एक है, क्योंकि महान बनने के लिए सफल तो होना ही पड़ेगा। जबकि मित्रों ऐसा नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत लोगों को अपनी जिंदगी में सफलता मिली ही नहीं और वो आज भी महान की फेहरिस्त में शामिल है। आप बताइए, भगत सिंह को सफलता मिली, सुभाष चंद्र बोस को सफलता मिली, नहीं मिली, ऐसे एक दो नहीं बहुत से नाम मिलेंगे। तिलक, लोकमान्य तिलक जी को सफलता नहीं मिली, बहुत लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन क्या इनकी महानता के समक्ष हम उंगली उठा सकते हैं? ये हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। इसका साफ मतलब हुआ कि नहीं, सफलता और महानता का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये तो हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने के दौरान हम या तो सफल हो जाते हैं या हम असफल हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कोशिश, यानी कि हमने जो अपने लिए एक मकसद चुना, हमने एक उद्देश्य बनाया और बड़ा उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य का संबंध सिर्फ मेरे अपने हित से नहीं था, उस उद्देश्य का संबंध सामाजिक हित से था, राष्ट्रीय हित से था, विश्व कल्याण से था। मैंने वो मकसद बनाया और फिर उस मकसद पर मैं काम करने लगा। काम क्या करने लगा? उस मकसद के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया और मैं अपनी जिंदगी में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। कोई बात नहीं, समाज इसके बाद भी आपकी पूजा करेगा, आपको अपने श्रद्धा का पात्र समझेगा और अपने इतिहास की किताब में आपका एक अध्याय सुनिश्चित कर लेगा। तो जरूरी नहीं कि सफलता महानता का पर्याय हो, बल्कि कभी न कभी आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सफलता कहीं ना कहीं महानता का विरोधी हो जाता है। मैं सफल हो गया हूं लेकिन तरीके मैंने गलत अपनाए, गलत तरीके अपनाए, अवैधानिक तरीके अपनाए, अनैतिक तरीके अपनाए, आपराधिक तरीके अपनाए और मैं सफल हो गया हूं, या कह लीजिए मैं बहुत करोड़पति खरबपति बन गया हूं, मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूं, कुछ भी बन गया हूं मैं, लेकिन तरीके मैंने गलत अपनाए, यानी कि जो मेरी कार्य प्रणाली थी वो गलत थी, तो मैं सफल होने के बाद भी महान नहीं कहलाऊंगा, मैं लोगों के आदर्श का आधार नहीं बनूंगा। तो मित्रों, एक बात बहुत साफ साफ समझना चाहिए हम सबको, वो ये है कि सफलता और महानता दोनों अलग अलग है। ये बात अलग है कि अगर महानता के साथ सफलता का सामंजस्य हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा, फिर तो कोई बात ही नहीं, वैसे उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो महानता है वो सफलता की मोहताज नहीं होती है, राइट? तो फिर वो किसकी मोहताज होती है? मित्रों, मैं एक बात यहां आपको बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से मना किया था, यहां तक कि जो शासक आते थे जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे उनसे भी वो कहते थे कि प्लीज कृपया मेरी मूर्तियां मत बनवाइएगा। वो इस बात को जानते थे कि यदि मेरी मूर्तियां बनवा दी गईं तो लोग मुझे पूजने लगेंगे, मतलब मुझे भगवान मान करके पूजने लगेंगे, और फिर जो मेरी बताए हुए जो मूल्य हैं, जो उपदेश हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी कोई वक्त रही नहीं जाएगी। लोग क्या समझेंगे कि ठीक है गौतम बुद्ध की ये मूर्ति है, इस पे फूल चंदन अक्षत चढ़ा दो, अगरबत्ती और धूप बत्ती दिखा दो, बस काम हो गया, अब हमें पुण्य मिल जाएगा, हमारे जो अपराध हैं वो माफ हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे, काम बन गया। वो इस बात को जानते थे, ये लोक चेतना की बहुत अच्छी समझ उनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होना है, जो होना है वह इस बात से होना है कि मैंने जो बातें बताई हैं, जो कही हैं, जो अनुभव किया है, जो ज्ञान प्राप्त करके अब मैं दूसरों को दे रहा हूं, लोग उस पर अमल करें, उस पर आचरण करें। बात आचरण करने से बनेगी, पूजा करने से बात नहीं बनेगी। और दुर्भाग्य देखिए कि गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी की मूर्तियां बनी है तो उन्हीं की बनी है, जगह जगह उनकी मूर्तियां बनी। और स्थिति फिर भारत में क्या हुई आप देखिए, आज बौद्ध धर्म के कितने थोड़े से अनुयायी रह गए हैं, वह धर्म नहीं चल पाया। खैर, क्यों नहीं चल पाया वो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहां जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो महान लोग होते हैं, महान लोगों की महानता सबसे पहले तो इसी में ही निहित होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आराधना हो, उनकी प्रशंसा हो, नॉट एट ऑल। वो अगर चाहते हैं तो कुल दो बातें, पहला तो यह है कि वो जिस मकसद में लगे हुए हैं वह मकसद हासिल हो जाए, ताकि समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। दूसरा ये चाहते हैं कि जो हम मूल्य स्थापित कर रहे हैं, जो आदर्श हम स्थापित कर रहे हैं, वह आदर्श अगर लोगों को ठीक लगता है तो उस पर आचरण करें, ताकि एक अच्छा समाज निर्मित हो सके, शांत समाज, व्यवस्थित समाज, उन्नत समाज, प्रेम पूर्ण समाज, इस तरह का समाज बन सके और वहां रहने वाले लोग बहुत आराम से सुखदायक जीवन बिता सके। यह उनका मूल मकसद होता है। तो मित्रों, सवाल यह है कि उनके इस मकसद को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? चलिए, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हम महान लोगों के प्रति जो श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि जो अर्पित कर सकते हैं वो यही है कि हम वो जो चाहते थे कैसे उसे पूरा करें। देखिए, एक जो पिता है, पिता को सबसे बड़ा संतोष कब मिलता है? पिता को संतोष तब मिलता है जब वह अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीते हुए देखता है, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीते हुए देखता है, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये जो महान लोग हैं, सच पूछे तो ये समाज के पिता हैं, राष्ट्र के पिता हैं, विश्व के पिता हैं, और ये चाहते हैं कि न केवल अभी के ही लोग बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा जीवन जिए। तो हम क्या करें, हम अपने पिता की इस इच्छा की पूर्ति में क्या योगदान दे सकते हैं? बस इस मित्रों, उसके लिए मुझे तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती हैं, सिर्फ तीन बातें, और यही मुझे सच्ची श्रद्धांजलि की पुष्पांजलि भी लगती है। नंबर वन, हम देखें, केवल उन्हें सुने नहीं, केवल उनके उपदेशों को ना जाने, हम देखें कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी जी है और उस जिंदगी में खासकर कितना स्ट्रगल किया है। आपको एक भी महान पुरुष ऐसा नहीं मिला होगा, नहीं मिलेगा, जिसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल न किया हो, संघर्ष न किया हो, थोड़ा मोड़ा संघर्ष नहीं, बहुत जबरदस्त संघर्ष। क्योंकि वो तो धारा के विरुद्ध चल रहा है ना, वो बहुत से विरोधी उसने अपने पैदा कर लिए हैं, क्योंकि वो चीजों को ज्यों का त्यों स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, उसे बहुत सी बुराइयां दिख रही हैं, बहुत सी कमियां दिख रही हैं, और वो उनके खिलाफ योद्धा की तरह खड़ा है, लड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकती है? वो कितने खतरे उठाता है, अपने अपने परिवार से लेकर के हर तरह के खतरे उठाता है वो। तो आप देखिए कि उसने क्या संघर्ष किया है। मुझे लगता है कि फिर हमें संघर्ष करने की शक्ति पैदा होगी और संघर्ष के प्रति आस्था का भाव भी पैदा होगा। फिर जो दूसरी बात हम उससे सीख सकते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि उसकी वर्किंग स्टाइल क्या रही है, मतलब प्रोसेस क्या रहा है, कार्य करने की पद्धति कैसी रही है उसकी। हम अपनी जिंदगी में काम करके केवल एक दो पद्धति, चार पांच पद्धति सीख सकते हैं, और मुझे लगता है कि महान लोगों के जीवन को देख करके हम उन सब की पद्धतियों को जान सकते हैं और उन पद्धतियों को जान करके अपने लिए एक बेहतर पद्धति निकाल सकते हैं। और इतिहास से हम यही तो सीखते हैं कि ये पद्धति काम नहीं कर रही, ये पद्धति काम नहीं कर रही, ये सर्वोत्तम पद्धति है। तो आप उनके कार्य करने की पद्धति देखिए, वो क्यों फेलियर हुए, इसमें क्यों नहीं सफल हो पाए, इसमें कैसे वो सफल हो गए, उस पद्धति को समझने की कोशिश कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए, और फिर हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। और तीसरा, जो किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों, यह कि उनके जीवन के आदर्श क्या थे, जीवन मूल्य उनके क्या थे, या कह लीजिए कि उनकी लाइफ फिलॉसफी क्या थी, विचार कैसे थे उनके, क्योंकि वो इसी अपने मूल्यों के लिए, इन्हीं इसी फिलॉसफी के लिए वो अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं, अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं जो कुछ भी है वो सब लुटा देते हैं केवल अपने इन आदर्शों के लिए। तो आप देखिए कि उनके वो आदर्श क्या थे, क्योंकि यही आदर्श ही हैं जिन्होंने इनको महान बनाया है, इन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। और तब हम अपने दांतों तले उंगली दबाते हैं कि बाप रे बाप, ये ऐसे लोग हैं, ये चट्टानी लोग हैं, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, जिनको हिलाना संभव नहीं है। आसान की तो बात छोड़िए, संभव ही नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी की रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा वक्त ऐसा निकालें जब हम बायोग्राफीज पढ़ें, आत्मकथाएं हों चाहे जीवन कथाएं हों, इनको पढ़ें। ज्यादा वक्त नहीं तो कम से कम आधा घंटा दें। बहुत 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 अधिक बायोग्राफीज लिखी गई हैं, ऑटोबायोग्राफी भी हैं, आत्मकथाएं भी हैं। आप पढ़ना जब शुरू करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपके अंदर चीजें बदलने लगी हैं, और वह बदलाव बहुत अच्छी दिशा में हो रहा है। उसके लिए फिर आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, और इसी के साथ ही मैं अब इसे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।